नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का संकल्प लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, केंद्र सरकार कर प्रणाली को सरल बनाने पर काम कर रहा है। आयकर भरना कठिन प्रक्रिया नहीं रह जाएगी। सरकार ने इंडिगो को किरायों का लंबित भुगतान यात्रियों को बिना किसी देरी के जारी करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 70वीं महापरिनिर्वाण दिवस की श्रद्धांजलि अर्पित की और विशाखापट्टनम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। नई दिल्ली में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत रूस व्यापार मंच को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा और दोनों पक्षों की मजबूत क्षमता यह संकेत देती है कि द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा।
पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम किया जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में भारत में जिस स्पीड और स्केल के साथ हमने बदलाव किए हैं वह अभूतपूर्व है। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस सिद्धांत पर चलते हुए भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और यूरेशिया आर्थिक संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी ताकत इसी विश्वास में निहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिखर सम्मेलन से भारत और रूस ने दोनों देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिससे दोनों देशों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार तथा व्यवसाय के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा है कि दोनों देश इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण, ऑटोमेटिक कलपुर्जे और वायरलेस मोबिलिटी तकनीक में साझेदारी कर सकते हैं।
भारत अफोर्डेबल एफिशिएंट ईवीज, टू व्हीलर्स और सीएनजी मोबिलिटी सॉल्यूशंस में आज ग्लोबल लीडर है। रूस एडवांस मटेरियल का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम मिलकर ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और शेयर्ड मोबिलिटी टेक, इसमें साझेदारी कर सकते हैं। इससे हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे बल्कि ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में भी योगदान दे सकते हैं।
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य डेयरी क्षेत्र में एक सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल लागू करने, अगले 5 वर्षों में पशुपालकों की आय में 20% की वृद्धि करना है। श्री शाह ने गुजरात के सनादर में बनास डेयरी के बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने बनास डेयरी के अत्याधुनिक 150 टीपीडी दूध पाउडर और शिशु आहार संयंत्र का भूमि पूजन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। गृहमंत्री आज बनास डेयरी में सहकारिता मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 3री बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि केंद्र कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए काम कर रहा है और आयकर अब एक कठिन प्रक्रिया नहीं रह जाएगी। नई दिल्ली में आज एक निजी मीडिया संस्थान के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि नागरिकों के उत्थान के लिए आयकर स्लैब को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार पिछले 2 वर्ष में सीमा शुल्क में लगातार कमी कर रही है और सीमा शुल्क को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के उपाय भी साथ ही कर रही है। उन्होंने कहा है कि मध्यम वर्ग में बचत कम नहीं हो रही है बल्कि आज वो निवेश में बदल रही है।
Savings is also investment today.
आज बचत भी एक निवेश है और इसलिए अगर आप इन सभी विभिन्न श्रेणियों के कुल योग को देखें तो बचत कम नहीं हो रही है और चाहे वो किसी प्रकार की बैंक सहायता के माध्यम से हो या बैंक से लिए गए ऋण के माध्यम से, मुझे लगता है कि संपत्ति भी बढ़ रही है और वास्तव में ये मध्यम वर्ग के हाथों में बढ़ रही है।
इट्स एक्चुअली इंक्रीजिंग इन द हैंड्स ऑफ द मिडिल क्लास।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को यात्रियों को किरायों का लंबित भुगतान बिना किसी देरी के जारी करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों के लिए भुगतान प्रक्रिया कल रात 8 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। एयरलाइनों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उन यात्रियों से कोई पुनर्निर्धारण शुल्क न ले जिनकी यात्रा विमान रद्द होने के कारण प्रभावित हुई है। भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या अनुपालन न होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस बीच दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन फिर से सामान्य हो रहा है। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया है कि इंडिगो की कुछ उड़ानें प्रभावित रहेंगी। उनसे यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले एयरलाइन से उड़ान की नवीनतम स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी है। प्राधिकरण रुकावटों को कम करने और यात्रियों के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है। लोगों को नवीनतम उड़ान स्थिति के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.newdelhiairport.in देखने की सलाह दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय यात्रियों को किसी भी प्रकार के ज्यादा किराए से बचने के लिए सभी प्रभावित मार्गों पर उचित और सही किराया सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। कुछ एयरलाइनों द्वारा बहुत अधिक हवाई किराए वसूले जाने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों को निर्देश जारी कर अब निर्धारित किराया सीमा का कड़ाई से पालन करने का अनिवार्य करने को कहा है। ये सीमाएं तब तक लागू रहेंगी जब तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाती। इसका उद्देश्य बाजार में मूल्य निर्धारण अनुशासन को बनाए रखना है। राष्ट्र आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 70वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब के अद्वितीय योगदान को उजागर करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इसमें प्रख्यात समाज सुधारक विधिवेत्ता और राजनेता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य प्रमुख नेताओं ने आज नई दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। महापरिनिर्वाण बौद्ध परंपराओं में निहित एक अवधारणा है जो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से आत्मा की पूर्ण मुक्ति को दर्शाता है। बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वस्तुकार थे, जिनके सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र पर विचार आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना कमांडरों से वर्तमान और भविष्य के युद्ध क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एकजुटता, एकीकरण और नवाचार को मजबूत करने को कहा है। कल नई दिल्ली में द्विवार्षिक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन में उन्होंने बहुक्षेत्रीय युद्ध में विकसित हो रही समकालीन रणनीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आश्वासन दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के इस्तेमाल के मामले में न्यायाधीश अत्यधिक सावधानी बरत रहे हैं। न्यायालय ने कहा है कि ऐसी तकनीक कभी भी न्यायिक निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया पर हावी नहीं होंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की अध्यक्षता वाली पीठ न्यायिक प्रणाली में एआई और मशीन लर्निंग के नियमन में मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। विशाखापट्टनम में भारत के साथ तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने ताजा समाचार मिलने तक 44वें ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 257 रन बना लिए हैं। आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक एक से बराबरी पर हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित नई दिल्ली की सुंदर नर्सरी में चल रहे सरस आजीविका फूड फेस्टिवल में दर्शकों और प्रदर्शकों का भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले महीने की 29 तारीख से शुरू हुआ ये उत्सव 9 दिसंबर तक जारी रहेगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आयोजित इस महोत्सव में महिला सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण है। पेश है एक रिपोर्ट।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित सरस आजीविका फूड फेस्टिवल में 25 राज्यों के 500 से अधिक पकवान देश की पाक कला की समृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं। मेले में स्वयं सहायता समूह की लगभग 300 लखपति दीदियां और महिलाएं देश के हर कोने से अपने सबसे अच्छे व्यंजन लेकर नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी आई हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए झारखंड की एक प्रदर्शक रेखा देवी ने मंत्रालय की इस पहल की सराहना की।
हम लोग को बहुत हेल्प करते हैं, आने का जाने का व्यवस्था करते हैं, रहने का व्यवस्था करते हैं। जो हम लोग स्टॉल लगाते हैं, स्टॉल का हर सुविधा हम लोग के पास मिलता है।
वहीं उत्तराखंड की एक और प्रदर्शक पूजा तोमर ने कहा,
हम लोगों ने उत्तराखंड का पहाड़ी खाना होता है उसको दिल्ली में लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। हम लोगों को सरकार की तरफ से बहुत बड़ी मदद मिलती है। हम लोग स्वयं सहायता समूह से लखपति दीदी हैं और हम लोग इसी से अपना रोजगार चलाते हैं।
सरस फूड फेस्टिवल में प्रवेश निःशुल्क है और यह आगंतुकों के लिए सुबह 11:30 बजे से 9:30 बजे तक खुला रहेगा। शिवांग मिश्रा के साथ दृष्टि पुन्यानी, आकाशवाणी समाचार।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।